विश्व में चैतन्य भगवान नहीं महापुरुष के रूप में पूजा जाता है। ये सिर्फ गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय वालों ने भगवान बनाए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवत के अंदर, और आज हम डिस्कस करेंगे, सभी पुराणों में लगभग, मतलब मैं जो पुराण पढ़ने का प्रयास करता हूं उस पुराण में कहीं ना कहीं एक श्लोक मिल जाता है जो चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन करता है। आप चाहे नरसिंह पुराण की बात करें, स्कंद पुराण की बात करें, पद्म पुराण की बात करें, है ना, उपनिषदों की बात करें, चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बारे में भविष्यवाणी कर दी गई है। तो भविष्य में जो प्रकट होने वाले उनके बारे में कोई पहले से बताए तो वो भगवान है। आजकल नकली भगवान बहुत है, बोलते हैं जी हमारे गुरु जी भगवान समान है। भगवान के पास में क्या गुण होने चाहिए, भगवान के क्या चिन्ह होने चाहिए, उसकी भी चर्चा हम करने वाले हैं। बताया गया है इस श्लोक के अंदर, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्राये यजन्ते ही सुमेधसा। कृष्ण वर्णम, तो वर्ण का अर्थ है रंग, तो कृष्ण वर्णम कैसे होंगे चैतन्य महाप्रभु? होंगे तो कृष्ण, लेकिन उनका वर्ण कृष्ण जैसा नहीं होगा, रंग परिवर्तित होगा। तो ये जो शब्द है कृष्ण, इसकी भी परिभाषा मध्य लीला के अंदर कृष्णदास कविराज गोस्वामी करते हैं और कहते हैं, कृषि भूवाचक शब्दो पड़श्चा निर्वृत वाचक तयोर एकयम परम ब्रह्मा कृष्णा इति अभिध्यास ध्यायते। कृष्ण भाचक, जो कृष्ण के अंदर कृ नाम का जो शब्द है इसका मतलब होता है आकर्षक, और ण का क्या अर्थ होता है? आप रोज हरे कृष्ण जपते हो, कृष्ण का शब्द का अर्थ बताओ, कौन बताएगा ण का अर्थ क्या है? वो तो क्र कनम हो गया। कृष्ण में कृष क्र और श, इसको दो भाग में बांटो, कृष्ण को ण जो है उसको अलग हटा दिया। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है, कृषि भो वाचक शब्दो, ये जो वाचक शब्द है कृष्ण, और ऋणश्च निर्वृत्त वाचक, एक है भूवाचक और एक है निवृत्तिवाचक, दोनों में फर्क है। तो हमें अभी तक कृष्ण ही नहीं पता, पूजा कर रहे हैं, तो कृष्ण का अर्थ है सर्वाकर्षक, बड़ा का क्या अर्थ है? क्या नाम है बड़ा का? कृष्ण शब्द का अर्थ है आकर्षक स्वरूप, भगवान का जो आकर्षक स्वरूप है। अणा शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक आनंद प्रदान करना, जैसे राम का अर्थ है रमेति, राम प्रदान करते आनंद, ऐसी अणा शब्द जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं। इसीलिए कृष्ण शब्द आकर्षक है, अणा जो है निवृत्ति वाचक है, इसके अंदर आध्यात्मिक आनंद छुपा है। तयोर एक्यम पर ब्रह्म, और ये दो शब्द जब जुड़ जाते हैं कृ अणा तरोर एक्यम पर ब्रह्म, तब वो पर ब्रह्म कहलाते हैं। कृष्ण इति अभिध्यायते, इसलिए उनको कृष्ण कहा जाता है। तो भगवान कृष्ण ये नहीं कि ऐसे कोई नाम रख दिया और कृष्ण हो गया, हर एक के एक एक भगवान है। इवन इसकी व्याख्यान करने जाऊं तो ये जो आधाशा है ये क्यों लगाया ये भी वर्णन किया गया। फिर क के नीचे र की मात्रा ऐसे क्यों लगाई है, क्यों भगवान के नीचे र की मात्रा ऐसे, करश ऐसे क्यों नहीं, कृष्ण क्यों नहीं है? लोग रख लेते हैं कृष्ण, या फिर लोग लिख देते हैं हमारे बच्चे का नाम है कृष्णा, कृष्ण अणा नहीं है कृष्ण। लोग बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये कृष्णा नहीं है, क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे ही कृष्णा हो गया तो अर्थ ही बदल जाए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कहा कि दो वाचक है कृष्ण और अणा, एक निवृत्ति वाचक एक भूवाचक शब्द है। तो इसलिए कृष्ण नाम का उच्चारण व्यक्ति करे तो उसको ये याद रखना चाहिए भगवान श्री कृष्ण है कौन, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कितने चिन्ह हैं जिससे वो पता चलता है कि भगवान साक्षात भगवान है। कितने चिन्ह है? कितने? सात आठ। हाँ, और कोई? भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कितने चिन्ह है खड़े सामने, कैसे पता चलेगा ये साक्षात कृष्ण है? या कोई भी आदमी आके पगड़ी बांध के बोले मैं कृष्ण हूं तो मान लेंगे? बोले चरण दिखाइए अपने चिन्ह। भगवान श्री कृष्ण जब चलते थे वृंदावन के अंदर, तो व्रज रज के अंदर उनके चिन्ह प्रस्तुत होते थे। तो श्रीदामा से भगवान कृष्ण पूछते हैं, श्रीदामा तुम मेरे से छोटे हो, तुम मेरी उंगली पकड़ के चलते हो, पीछे पीछे क्यों नहीं चलते हो? तो श्रीदामा कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके पीछे पीछे इसलिए नहीं चलता हूं क्योंकि जब आप चलते हैं तो आपके चरण चिन्ह इस व्रज रज में बनते हैं, उन चरण चिन्हों को देखने मात्र से हमें आनंद का अनुभव होता है और अगर हम उस पर चलेंगे तो मिट जाएंगे, इसलिए हे प्रभु हम साइड में चलते हैं। सुदामा, श्रीदामा, जितने भक्त हैं वनंद सब साइड में चल रहे हैं, पीछे गाय चल रही हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह पर कोई भी अपने पैर नहीं रखता। तो कितने चिन्ह हैं भगवान के चरणों में? 19। कौन कौन से? ये नहीं वाले 8 एक पैर में और 11 एक पैर में, 19 चिन्ह हैं। 19 चिन्ह, जिसके अंदर 19 चिन्ह हो, गदा का चिन्ह हो, ओमकार का चिन्ह हो, कुशा का चिन्ह हो, भाग्य रेखा का चिन्ह हो, जिसके चरणों में इस प्रकार के 19 चिन्ह पाए जाते हैं वो श्री कृष्ण बनने का दावा कर सकता है। अच्छा, श्रीमती राधा रानी के चरणों में कितने चिन्ह? राधा रानी भी तो है, नहीं है? कितने है? 18। उसमें भी 19 चिन्ह है, भगवान की शक्ति है, बराबर, इक्वल। 11 एक पैर में, 8 एक पैर में, बराबर चिन्ह। अच्छा, चैतन्य महाप्रभु के चरणों में कितने चिन्ह है? अब आई असली बात, तो है 38। अरे वाह, हाँ 32। 32 चिन्ह है चैतन्य महाप्रभु के चरणों में, 32 चिन्ह है। और इसकी पुष्टि जब आप करेंगे, आप सोचेंगे कृष्ण के 19 हैं, चैतन्य महाप्रभु के 32 कैसे हो गए? क्योंकि अपने जीवन का आनंद प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपने विस्तार स्वरूप पर राधा रानी को प्रकट करते हैं। जब राधा रानी उन्हीं के शरीर में होती है जिसे कृष्ण कहते हैं, वही चैतन्य है। इसका मतलब जब हम ये श्लोक बोलते हैं, ईश्वरम परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, तो ये किसके लिए बोल रहे हैं? जो गोविंद है वही चैतन्य महाप्रभु है। राधा कृष्ण के रूप में तो वो अपना विस्तार करते हैं। इसीलिए जैसे व्यक्ति का पासपोर्ट पे एक नाम होता है, नाम होता है ना पासपोर्ट पे, और वो नाम उसका ऑफिशियल नेम होता है, बाकी जगह वो बदल लेता है। दीक्षित नाम कुछ और होता है, निक नेम कुछ और होता है, दोस्त कुछ और बुलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के हजारों नाम है, सहस्त्र नाम, लेकिन उनका पासपोर्ट का नाम है ईश्वरम परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद। गोविंद पासपोर्ट नेम है गोलोक धाम का, क्योंकि गायों का लोक है, गायों को आनंद प्रदान करने वाले भगवान, गायों की रक्षा करने वाले भगवान, इसलिए उनका नाम प्राय क्या लिखा जाता है, पासपोर्ट नेम है गोविंदा। तो जो गोविंद है, राधा कृष्ण के रूप में विस्तार नहीं किए, वो गोविंद ही चैतन्य है। लेकिन कैसे है? कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्णम, कृष्ण तो है लेकिन कृष्ण के जैसा रंग नहीं है। तो तुषा का मतलब होता है कांति। भगवान श्री कृष्ण जब चैतन्य रूप में है तो उनकी कांति अलग है। तो गोलोक धाम में अगर दो भाग कर दिए जाएं, एक गोलोक धाम एक मायापुर धाम, ये भी शाश्वत है ये भी शाश्वत है। इसके आदि भगवान है कृष्ण, इसके आदि भगवान चैतन्य, दोनों में कोई भेद थोड़ी है। इवन धाम अपराध में लिखा है, कोई नवदीप को और वृंदावन को, व्रज मंडल को भेद करता है कि वृंदावन सबसे ऊंचा और नवदीप थोड़ा नीचा, तो उसको अपराध लगता है। बराबर, गोलोक धाम है दोनों, यहां गायों के साथ में है भगवान और यहां भगवान नवदीप में अपने पार्षदों के साथ में है। इसीलिए बोला गया गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। चैतन्य ये नहीं 500 वर्ष पूर्व ही आके हरे कृष्ण महामंत्र दिए, उनकी भी तो दीक्षा हरे कृष्ण महामंत्र में हुई। गोलोक में प्रेम धन जो है नवदीप में, वो हरि नाम ही है, शाश्वत विराजमान हरि नाम। तो तुषा का मतलब है कांति, कृष्ण वर्णम तुषा, कांति परिवर्तित है भगवान की, क्योंकि दूसरे लोक की बात हो रही है, मायापुर नवदीप धाम की बात हो रही है। तो कांति परिवर्तित होने की एक बहुत सुंदर लीला व्रज मंडल में भगवान करते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी दोनों व्रज मंडल में घूम रहे थे और लीला आस्वादन करने के लिए सेवा कुंज की ओर जा रहे थे। और श्रीमती राधा रानी ने अपने चरणों में बहुत सुंदर आलता लगाया था। आलता लगता है ना, लाल रंग का माताएं लगाती हैं, डेकोरेशन करते पैरों का, लाल रंग का आलता लगाया था। तभी यमुना के तट के किनारे एक इमली का वृक्ष था, उस इमली के वृक्ष से इमली गिरी। इमली गिरने से राधा रानी के चरणों का आलता बिगड़ गया। राधा रानी ने उस इमली के वृक्ष को श्राप दिया, कहा तुमने भगवान से कृष्ण की सेवा में मुझको व्यवधान डाला है, मैं जाती मेरे चरण चिन्ह देख करके, चरण को देख करके श्री कृष्ण को प्रसन्नता होती, उनकी सेवा में व्यवधान डाला है, मैं श्राप देती हूँ। तुम वृक्ष के रूप में रहोगे तो, लेकिन कभी तुम्हारा फल कोई पा नहीं पकता, पकेगा नहीं कभी भी। पूरे ब्रजमंडल में इमली के वृक्ष बहुत है, लेकिन इमली पकती नहीं, बाहर से मंगानी पड़ती। तो इमली ताल नामक जो वृक्ष, अभी इमली ताला मंदिर बन गया है गौड़िया मठ का, तो इमली ताल जो है उसी के नीचे भगवान श्री कृष्ण बैठ गए और राधा रानी गुस्सा करके निकुंज सेवा कुंज की ओर चली गई। जब बैठे थे कृष्ण तो क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे कृष्ण, किसका स्मरण करते हैं, क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे कृष्ण, राधे राधे, क्या बोल रहे थे, बोल रहे थे। और राधे 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 राधा राधा बोलते बोलते क्या हो गया, स्वरूप परिवर्तित हो गया, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद है, जैसा स्मरण करते वैसा स्वरूप बन जाता है। भगवान का स्वरूप ऐसा हो गया, कृष्ण तो है, कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्णम, कृष्ण तो है लेकिन इनकी त्वषा जो है कांति परिवर्तित हो गई है। नारद मुनि ने देखा, व्रजमंडल में उतरे नारद मुनि ने कहा बड़े सुंदर स्वरूप है भगवान, ये क्या रूप है आपका। भगवान ने कहा तुरंत ही जब द्वापर युग समाप्त होकर कलयुग प्रारंभ होगा और कलयुग के 4,500 साल बीत जाएंगे तो मैं गोरे रंग के रूप में प्रकट होऊंगा, ये वही स्वरूप है। कहा भगवान इसमें तो आप और अति सुंदर लग रहे हैं, कृष्ण काले रंग के हैं, श्याम वर्ण है, तब तो सारे संसार के 70 करोड़ गोपियां, एक रास नृत्य में 70 करोड़ गोपियां हैं, 70 करोड़ गोपी उनके पीछे घूम रही हैं। सोचकर देखिए अगर कृष्ण गोरे रंग के होते तो क्या होता है? तो इतना आकर्षण है भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, भगवान की लीलाओं में, भगवान के नाम में, है ना। कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्णम, इसीलिए जब गौरंग महाप्रभु आए तो उन्होंने सेम लीला प्रस्तुत करी। गौरंग महाप्रभु जब वृंदावन की यात्रा कर रहे थे सन 1515 में, भगवान चैतन्य ने आकर के इसी इमली ताल वृक्ष के नीचे बैठे। चैतन्य महाप्रभु अक्रूर घाट पर रहा करते थे, अक्रूर घाट पे आज भी एक मंदिर है जिसे अक्रूर धाम कहते हैं, उस में वहां वो भी वृक्ष विराजमान है जिसके नीचे चैतन्य महाप्रभु ने बैठ करके तपस्या करी, वहां रहते थे और वहां के व्रजवासियों के द्वारा प्रसाद भेंट जो चढ़ता था उसे पाया करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु अक्रूर घाट से चल करके रोज जप करने के लिए इमली ताल वृक्ष के नीचे आते थे। एक दिन इमली ताल वृक्ष के नीचे कृष्ण का विरह सताने लगा और क्या बोलने लगे, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, क्या बोलने लगे, आपको विरह नहीं सताता है, विरह सताएगा तो विरह करुणा की भावना से, विरह भावना से, कृष्णा 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 कृष्णा। जब उन्होंने कृष्ण 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 बोला उच्चारण करने मात्र से क्या हुआ, भगवान चैतन्य का रूप कैसा हो गया, श्याम वर्ण हो गया, रूप परिवर्तित हो गया। तब नारद मुनि आए बोले कि प्रभु ये क्या है, बोले कभी कृष्ण में आप गौरंग रूप दिखाते हैं और गौरंग में कृष्ण रूप दिखाते हैं। भगवान ने कहा क्यों, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य, मैं वही कृष्ण हूं। तो इस बात की पुष्टि अनेक शास्त्र में हुई कि गौरंग महाप्रभु कोई महापुरुष नहीं, उनके चरण चिन्हों से पता चलता है कि वो आदि भगवान है जिनके अंदर श्रीमती राधा रानी शक्ति भी है, सत शक्ति भी है, चित्त शक्ति भी है, आनंद शक्ति भी है और भगवान श्री कृष्ण विराजमान। जब भगवान आते हैं तो क्या लेके आते हैं, संग स्व अंश, अपने साथ में संगोपांगास्त्र। तो संग का मतलब है अपने स्वांश विस्तारों को लेके आते हैं। दो प्रकार के विस्तार है भगवान के, विभिन्न अंश और स्वांश। स्वांश से विस्तार करने के साथ साथ में भगवान अपने विभिन्न अंश का भी विस्तार करते हैं। स्वांश में नित्यानंद प्रभु को लेके आते हैं। नित्यानंद कौन है, बलराम, हैलो निताई और बलराम हैलो निताई और निमाई कौन थे, ब्रजेंद्र नंदन जेई, जो ब्रज के ब्रजेंद्र नंदन, ब्रज में वास करने वाले ब्रजेंद्र नंदन जेई सची सुता हैला से, वही सची माता के पुत्र बने हैं, और बलराम हैलो निताई, और बलराम नित्यानंद निताई बनकर के प्रकट हुए, नित्यानंद प्रदान करने। अद्वैत आचार्य महाविष्णु सदाशिव तो अपने ही स्वांश रूप में भगवान प्रकट हुए हैं, और उपांग भगवान अपने साथ में भक्तों को भी लेके आए हैं, और उन भक्तों की कैटेगरी में सबसे शुद्ध भक्त है कौन, सबसे शुद्ध भक्त कौन है, गदाधर, ओके, और श्रीवास। श्रीवास को शुद्ध भक्त व्याख्यान किया गया। अभी कुछ दिन पहले मैं श्रीवास ठाकुर के जन्म दिवस पर एक कथा कर रहा था, तो मैं आपको एक सुंदर बात बताता हूं। कवि कर्णकपुर ने गौर गणेश दीपिका के अंदर वर्णन किया है संक्षिप्त रूप में कि ये पांचों तत्व हैं कौन, पंच तत्व जिन्हें हम कहते हैं। रोज उनका हरि नाम जपने से पहले नाम जपते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। तो इसमें जो पांच है, ये पांच कौन है, कवि कर्णपुर लिखते हैं, अस्य अर्थो विवत्तस्य सा संक्षिप्या विलेखिते। ये मैं संक्षिप्त में विलेखन कर रहा हूं। कवि कर्णपुर कहते हैं, भक्त रूपो गौर चंद्रो यतो असो नंद नंदनहा। जो नंद नंदन थे, भक्त रूपो गौर चंद्रो, वही भक्त रूप लेकर के गौर चंद्र भगवान प्रकट हुए। जो कृष्ण चंद्र थे, व्रज चंद्र थे, वो आज मायापुर चंद्र बनकर प्रकट हुए। कृष्ण भक्त रूपो गौर चंद्रो यतो असो नंद नंदनहा, भक्त स्वरूपो नित्यानंदो व्रजे यम श्री हलायुध। जो हलायुध है, हल का आयुध लेकर के प्रकट होते, आयुध मतलब भगवान के पास जो शस्त्र अस्त्र है, शंख चक्र कमल गदा, बलराम के पास हल, इसलिए कहते हैं हर परेशानी का हल किसके पास है, बलराम के पास। बलराम गुरु तत्व है, गुरु जी के पास में हर चीज का हल है, इसीलिए बलराम के पास में क्या है, हल आयुध, हल आयुध। भक्त स्वरूप नित्यानंदो, तो भक्त का रूप है कौन, चैतन्य, और भक्त का स्वरूप है कौन, नित्यानंद। भक्त अवतारो आचार्यो अद्वैतो यम श्री सदाशिव, और सदाशिव रूप में अद्वैत आचार्य प्रकट हुए। वो कौन है, भक्त अवतार, एक है भक्त रूप, एक है भक्त स्वरूप, एक है भक्त अवतार, इससे पता चलता है। फिर भक्ताख्यम श्रीनिवास अध्य यतस्ते भक्त रूपिण, शुद्ध भक्त कोई है भक्त रूपिण तो वो है श्रीवास ठाकुर। और भक्त शक्ति, ये शक्ति है गदाधर, भक्त शक्ति द्विज, ये ब्राह्मण बन के प्रकट हुए हैं। भक्त शक्ति द्विज अग्रगण्यम श्री गदाधर पंडित, गदाधर पंडित कौन है, अग्रणी पंडित है, इसलिए गदाधर को भी टाइटल दिया गया पंडित। और श्रीवास भी शास्त्रों के निपुण है, इसलिए उनको भी एक नाम दिया गया, क्या, पंडित, श्रीवास पंडित। तो श्रीवास ठाकुर भी कहते हैं, श्रीवास पंडित भी कहते हैं। तो उपांग, संगोपांग और अस्त्र, चैतन्य महाप्रभु के पास में अस्त्र है, शंख चक्र कमल गदा, है ना अस्त्र, शंख चक्र क्या है, हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम, हरि नाम ही अस्त्र है। जब गौरा नित्यानंद प्रचार कर रहे थे नवदीप में, तो हरिदास ठाकुर और नित्यानंद को नाम हटा प्रचार करने के लिए भेजा गया। हम भी जाते हैं प्रचार करने, लेकिन हम व्यक्ति को नाम से हटा देते हैं, कहते हैं अरे तू हट, क्योंकि हमारा अहंकार बहुत है। लेकिन हरिनाम देने के लिए, नाम हट मतलब, हट का मतलब बाजार, नाम का बाजार था जिसे खोला गया था। और चैतन्य महाप्रभु रोज पूछते थे कि है ना आज आपने कितने लोगों को प्रचार किया, तो नित्यानंद हरिदास ठाकुर कहते थे आज इतने लोगों को प्रचार किया, इतने लोगों को प्रचार किया। एक दिन जगाई और मधाई नामक, आप जानते हैं, दो पापी जो कि ब्राह्मण थे, लेकिन वैश्य धर्म का पालन करते 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 इतना निम्न हो गए, नीचे गिर गए कि वो शूद्र से भी नीचे गिर गए। मदरापान, मांसाहार का सेवन, परिस्त्री संग, जुआ आदि सब करने लग गए। और जब नित्यानंद हरिदास ने कहा बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा, तो उनको गुस्सा आया, बोले जो शिक्षा देने आ गए दो, हम तो यहाँ पर शराब पिएंगे। उठा करके जब उन्होंने कहा नहीं नहीं, पैर पकड़ लिए, हरि नाम बोलो, बोलो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा, गुस्सा आ गया, उठा करके मटका दे के मारा, खून निकल गया। नित्यानंद हरिदास ठाकुर तो भागे भागे हरिदास ठाकुर गए, बोले महाप्रभु नित्यानंद के भगवान के सिर पर मार दिया गया है मटका। तो चेतन महाप्रभु को क्रोध आया, क्रोध आकर के क्या ले लिया अपना अस्त्र, सुदर्शन चक्र, क्योंकि कृष्ण है तो सुदर्शन को बुलाना थोड़ी पड़ता है और हमेशा है ही है। तो भगवान ने जब चक्र लिया तो नित्यानंद ने प्रार्थना करी, पैर पकड़ लिए, बोले जगाई मदाई को मत मारिए, क्योंकि प्रभु इस युग में तो आपका अस्त्र क्या है, हरिनाम, हरिनाम के द्वारा लोगों को मारना है। आप देखिए श्रील प्रभुपाद ने बिल्कुल चैतन्य महाप्रभु की शक्ति का संचार किया पूरे विश्व में। हम जाते हैं ऑलरेडी वहां पर कोई ना कोई भक्त होते हैं और फिर हम प्रीचिंग करना शुरू करते हैं तो दो चार लोग जोड़ लेते हैं, हम कहते हैं हमने प्रीचिंग किया। श्रील प्रभुपाद प्रीचिंग करने जा रहे हैं जहां पर लोग मदिरा का सेवन करते हैं, मांस का सेवन करते हैं, वहां पर जाकर। कभी आपने ऐसा सुना है आज इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है तो इंडिया अपनी सेना को इस्तेमाल करती है या पाकिस्तान सेना को इस्तेमाल करते हैं? अपनी सेना। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं मैंने दूसरी साइड की सेना को इस्तेमाल किया उन्हीं के लोगों को हराने के लिए, उन्हीं के लोगों को पहले प्रचार किया, अस्त्र से उनको काट दिया हरिनाम रूपी अस्त्र से, फिर उनको अपना भक्त बना लिया, शरणागत। शरणागत बनाने के बाद फिर आर्मी बनाई और आर्मी बना के उन्हीं की सेना को फिर हरा दिया। इतनी शक्ति है। एक बार भक्ति सिद्धांत महाराज से किसी ने पूछा, भक्ति सिद्धांत महाराज ये हरिनाम जो है इतना शक्तिशाली है लेकिन हम लोग प्रचार करने जाते हैं इतना सफल क्यों नहीं होते? उन्होंने कहा क्योंकि आपको हरि नाम पर विश्वास नहीं, हरि नाम पर विश्वास नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन करते हैं हरि अक्षर गाए हरि नाम न आए, हरि अक्षर गाते हैं, हरि अक्षर है, हरे कृष्ण लिख दिया दीवार पे तो लोग बोलते हैं ओहो यही तो है। प्रभुपाद बोल रहे हैं दिस वर्ल्ड इज मेटीरियल, ये पूरा संसार भौतिक है, तो ये जो साउंड वाइब्रेशन है हरे कृष्ण ये वाइब्रेशन भी भौतिक है। बोलोगे सुनोगे, बोलोगे सुनोगे, परिवर्तन नहीं होता है। बहु जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन तबू तो ना पाए प्रभु पदे प्रेम धन। क्यों परिवर्तन नहीं हो रहा है? 20 साल से कर रहा है कोई, 15 साल से जप रहा है कोई, 40 साल से जप रहा है, प्रभु जी को गुस्सा भी आता है, प्रभु जी का सेंटर पे कोई और आकर के लेक्चर दे दे तो गुस्सा आ जाता है, है? क्यों ऐसी चीजें परेशान कर रही हैं? प्रभु जी के भक्त का कोई और डोनेशन ले जाता है तो गुस्सा आ जाता है, क्यों है ये? क्योंकि हरिनाम परिवर्तन कर ही नहीं रहा, क्योंकि अभी तक हमने हरिनाम गाया ही नहीं है। हरिनाम जिस दिन गाएंगे तो नित्यानंद जैसे होंगे, चोट लगने पर भी पैर पकड़ेंगे कि इनको मत कुछ करिए, क्योंकि अभी हम हरि अक्षर गा रहे हैं। आप कहेंगे ऐसा कैसे? हम जब पहले दिन आते हैं मंदिर में तो कहा जाता है हरे कृष्ण जपिए चाहे एक माला चाहे दो माला, है ना, वो व्यक्ति की प्रारंभिक अवस्था है। लेकिन उसके बाद वो श्रवण 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 करते करते इस स्टेजर पे आ जाता है, स्टेट पे, कि अगर वो अब हरि नाम को ध्यान से नहीं जपता है तो उसे अपराध लगेगा। अजामिल ने अनजाने में नाम जप किया और उसको नाभावास का फल मिला क्योंकि उसने हरि नाम की महिमा का श्रवण नहीं किया। हम तो रोज कर रहे हैं, रोज सुबह मंगला आरती में हरि नाम के 10 अपराध पढ़ रहे हैं फिर भी नाम अपराध कर रहे हैं, तो एक समय ऐसा आ जाएगा। भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन करते हैं मैं एक जगह गया था और उस जगह पर नवदीप में अपने पुत्र भक्ति सिद्धांत जिनका बचपन का नाम क्या था, विमल प्रसाद, विमल प्रसाद और बाकी बच्चों को लेकर हम गए। तो ज्यादातर भक्त कहाँ रुकते हैं, आश्रम में या मंदिरों में। हम नवदीप की परिक्रमा करने गए, तब उस टाइम नवदीप में रहते नहीं थे, तो जब नवदीप गए तो वहां पर एक मंदिर था, तो हमने किसी से पूछा इस मंदिर में रह ले, उन्होंने कहा हाँ जी रह लीजिए। मंदिर में रुक गए, ताला चाबी दे दिया किसी ने, अंदर गए तो रात को भूत आ गया। भूत आया तो उठा उठा कर बच्चों को धक्का मारता है सोते में से, किसी के कपड़े फाड़ देता है, किसी की धोती खींच देता है, खाने के आइटम को नीचे फेंक देता है, खिड़कियां दरवाजे हिला रहा है, भक्ति विनोद ठाकुर के जो ग्रंथ है उनको पन्ने फाड़ रहा है। तो बहुत ही अजीब सी कार्य हो रहा था। उन्होंने जोर जोर से भगवान के नाम का उच्चारण किया तो भूत अदृश्य हो गया। सुबह वहां के जो जानने वाले लोग थे भक्ति विनोद ठाकुर का नाम सुनते ही रिसीव करने के लिए आए, बोले केदारनाथ बाबू, केदारनाथ दत्त बाबू हमें पता चला आप यहां रुके, आपने बताया क्यों नहीं रात्रि में कि आपको रुकने के लिए जगह चाहिए, हमारे घर रुकते। बोले नहीं नहीं, जहां भी रुको भक्त के लिए कोई भय नहीं है, भक्त का नाम है अभय, इसलिए प्रभुपाद जी का नाम रखा अभय, और भगवान का नाम है अभयंकर, भगवान बड़े से बड़े भय को टाल सकते हैं, इतनी शक्ति है। अभयंकरम भगवान ने भय रहित कर दिया हरि नाम के द्वारा, सब कुछ ठीक हो गया। तो कहते हैं, कुछ बुजुर्ग बताते हैं कि यहां पर एक भूत रहता है भक्ति विनोद ठाकुर के, आपको मिला? बोले हाँ जी मिला था। कौन था वो भूत? कौन था? हाँ, पुजारी था, हरि नाम का जप करता था, शास्त्र पढ़ता था। फिर भूत कैसे बन गया? आदमी कहता हरि नाम टेढ़ा लो मेढ़ा लो कैसे भी लो, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा नहीं, पुजारी था, मंदिर का पुजारी होकर के भूत बन गया। तो हम भूत भी बन सकते हैं, ये मत सोचिए 16 माला जप कर रहे दीक्षा लिए और मंदिर में सेवा करते हैं तो बोले हम तो अब गोलोक धाम का टिकट फिक्स है। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा क्योंकि वो हरि अक्षर करता था, हरि नाम पर विश्वास ही नहीं था, गलत काम करता था, क्रोध करता था, लालच करता था, पैसे की लालसा के अंदर पूजा पाठ करता था। तो जहां ये सब चीजें वासनाएं हैं वहां पर हरि नाम प्रकट नहीं हो रहा, हरि अक्षर है और हरि अक्षर चेंज नहीं करने वाला। जैसे हमारे घर का जो विग्रह है उसमें और मंदिर के विग्रह में क्या भेद है? दोनों ही तो भगवान है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं हरि नाम उच्चारण के द्वारा भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करी जा सकती है। श्रील प्रभुपाद जब कृष्ण बलराम मंदिर की स्थापना कर रहे थे तो ऐंद्रा प्रभु, जो कि बहुत सुंदर शुद्ध भक्त हरि नाम कीर्तन करते थे, वो अपने एक प्रवचन में बोलते हैं कृष्ण बलराम की स्थापना हो रही थी, प्रभुपाद ने कहा व्रजवासी पुजारियों को बुलाओ, पंडितों को बुलाओ यज्ञ करने के लिए, और ऐंद्रा प्रभु से कहा तुम कीर्तन करना। तो उन्होंने पूछा विच इज मोर इंपॉर्टेंट, ऐंद्रा प्रभु ने प्रभुपाद से पूछा विच इज मोर इंपॉर्टेंट, इन दोनों में से अधिक महत्वपूर्ण क्या है, हरि नाम या ये यज्ञ जो हो रहा है? प्रभुपाद ने कहा यज्ञ इज नॉन इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट या मिड इंपॉर्टेंट, नहीं नो इंपॉर्टेंट, इसकी कोई महत्वता ही नहीं है यज्ञ की। बोले फिर कर क्यों रहे? दिखावे के लिए, वरना मंदिर जो वृंदावन के लोग हैं वो कहेंगे अरे पता नहीं कैसा मंदिर है, अंग्रेजों ने खोल लिया, पूजा पाठ को जाता नहीं, हरि नाम जपते रहते हैं बस। तो प्रभुपाद ने कहा उनको दिखाने के लिए प्राण प्रतिष्ठा के बड़े बड़े उच्चारण करने वाले, श्लोक उच्चारण यज्ञ करने की आहुति देने वाले पुजारी बुलाए गए, पर प्रभुपाद ने कहा कृष्ण बलराम आएंगे तो आपके हरि नाम से आएंगे। उसके बाद में आप देखते हैं जब भी प्राण प्रतिष्ठा होती है आचार्य गण गुरु वर्ग के जो लोग हैं वो ऊपर चादर डाल करके और भगवान की स्थापना करने में ऐसे हाथ लगाकर कुछ मंत्र पढ़ते हैं, है ना, पुजारी मंत्र पढ़ता है लेकिन गुरु क्या मंत्र पढ़ते हैं? हरे कृष्ण। जितनी उस व्यक्ति की श्रद्धा होती है जो स्थापना कर रहा है उतनी श्रद्धा उस विग्रह के अंदर प्रवेश करती है, उतनी श्रद्धा। इसीलिए घर के प्राण प्रतिष्ठित विग्रह के अंदर हम भी हरि नाम जपते हैं, वो भी भगवान है और मंदिर में भी भगवान है और जगन्नाथपुरी में भी भगवान है और वृंदावन में भी भगवान है, सारे भगवानों में क्या भेद है, सब बराबर है, फिर इतनी सारी धाम यात्राओं में जाने की आवश्यकता है क्या? क्योंकि जिसने स्थापना करी है उसकी जितनी शरणागति भगवान के प्रति है उतनी शरणागति में ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम स्तते वा भजामि अहम्। भगवान कह रहे हैं जितनी प्रतिशत तेरी शरणागति होगी उतनी अनुपात में प्रतिशत में मैं उस विग्रह में प्रस्तुत होगा, और वही चीज हरिनाम में अप्लाई हो रही है। जितनी प्रतिशत मेरी हरिनाम के ऊपर विश्वास होगा उतने मेरे हरि अक्षर के अंदर 1% भगवान, 2% भगवान, 3%, तो 100% में से अगर मेरी 3% शरणागति है तो अभी 97% मेरी हरिनाम निकला ही नहीं, 3% हरिनाम निकला। अशुद्ध नाम का मतलब है 100%, बहुत ऊंची बात है। और हरिनाम के लिए बताया गया कि हरिनाम जब गाया जाए जब जपा जाए तो उस हरिनाम के अंदर कीर्तन करते वक्त चैतन्य महाप्रभु ने दो ही चीजों का वर्णन किया, एक मृदंगा एक करताल। प्रभुपाद कहते हैं मैक्सिमम यू कैन हैव अ स्मॉल हारमोनियम मैक्सिमम, लेकिन उसके अलावा वो झुम 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 बजाना, बड़े करताल ये सब बजाना, प्रभुपाद ने कहा ये कीर्तन नहीं है, इस कीर्तन को अक्षर को बोल करके शोर मचाने से किसी का परिवर्तन नहीं होगा, रॉक बैंड्स करना ये सब करना ठीक है अगर हम जाए, लेकिन लोग बोलते हैं प्रीचिंग मूवमेंट है, ऐसा करना है, क्या हो क्या रहा है? प्रीचिंग हो रही है क्या? लोग जुड़ रहे हैं क्या? क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अभी हम अपने अपने शास्त्रों को समझ नहीं रहे, पढ़ नहीं रहे, उनको अप्लाई नहीं कर रहे। इंदिरा प्रभु का हरिनाम एक सीरीज में सुन रहा था, उसने सीधा सीधा कहते हैं नोबडी इज बिकम इज बिहाइंड बिकमिंग अ प्योर डिवोटी। कोई भक्त बनना ही नहीं चाह रहा, शुद्ध भक्त तो बहुत दूर की बात, सब दिखावे में, हम दिखावे में चल रहे। मृदंग करताल से सुंदर हरिनाम करे, और हरिनाम करते वक्त व्यक्ति की शरणागति रहे कि मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्यक्रम कर रहा हूं, कथा करूं, प्रचार करूं, कीर्तन करूं, प्रसाद बनाऊं, भगवान की प्रसन्नता हेतु। सेंटर इज कृष्ण। जहां परिवर्तित हुआ कि कृष्ण के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं तो मासेस के लिए कर रहा हूं। प्रभु जी आज अच्छा प्रसाद बनना चाहिए, 400 लोग आ रहे हैं। क्यों? जिस दिन 400 नहीं चार होंगे तो उस दिन गंदा, क्योंकि कृष्ण नहीं खाएंगे उस दिन, भोग नहीं लगाओगे। ये जो मानसिकता है यही हमारे को बताती है हम शरणागत नहीं है। प्रभु जी आज ना बहुत भीड़ आएगी सैटरडे, अच्छा लेक्चर देने वाले बुलाओ संडे को, क्योंकि हम भीड़ को देख रहे हैं। कृष्ण मतलब आज अगर कृष्ण कथा सुन रहे हैं तो आज कोई भी चला दो, ये तो मानसिकता है हमारी, क्योंकि हम पब्लिक ओरिएंटेड है, कृष्ण ओरिएंटेड नहीं है। सुनने में बुरा लगता है, मुझे क्षमा करिएगा अगर किसी को बुरा लगे तो, लेकिन सच्चाई जो है। तो संग पांगास्त्र पार्षदम, पार्षदों को लेकर आए गदाधर, स्वरूप दामोदर, श्रीवास, मुरारी गुप्त, ऐसे पार्षद थे, और स्वांश रूप में संग अपने लेकर के आए। यज्ञ संकीर्तनम प्राय, मुख्य क्या था? हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करना। यंते ही सुमेधसा, लेकिन इसको वही पूजेगा जो सुमेधा होगा, जिसकी बुद्धि सर्वत्र वितरित नहीं होती होगी, एक जगह लगी होगी। तो ऐसे अनेक पुराणों में श्रील प्रभुपाद जी ने भी वर्णन किया, महाभारत के अंदर भी वर्णन आया है, विष्णु सहस्त्र नाम के स्रोत के अंदर चैतन्य महाप्रभु के बारे में। मैं जल्दी से आपको सभी पुराणों का उपाख्यान दे देता हूं, समय कम है। सुवर्णो वर्णो हेमांगो, भगवान आएंगे, महाभारत में लिखा है सुवर्णो वर्णो हेमांगो वरंग चंदनम अंगदी, अपने अंग में चंदन लगाकर आएंगे, स्वर्ण वर्ण के भगवान होंगे। संन्यास कृत शमः, संन्यास भी लेंगे, संतो निष्ठा शांति परायण, और ऐसे शांत भगवान शांति परायण भक्ति का प्रचार करेंगे पूरी पृथ्वी पे, पूरी पृथ्वी पे। लेकिन पूरी पृथ्वी पे तो हुआ नहीं, फिर बाद में प्रभुपाद जी को भेजे, कहा पूरी पृथ्वी पे करो। तो जब प्रभुपाद गौर निताई को लेके विदेशों में थे, तो गौर निताई के सामने खड़े होकर के एक बार प्रभुपाद प्रार्थना कर रहे थे, तो उनके आंखों से आंसू निकल रहे थे। तो एक भक्त ने पूछा, प्रभुपाद आप प्रार्थनाओं में रोते क्यों है? तो प्रभुपाद ने कहा, गौरंग नित्यानंद इतने कृपालु है, इतने दयालु है, कि नवदीप में मैं इनकी पूजा किया करता था, वहां से चल करके ये विदेशों तक आए हैं आप लोगों का उद्धार करने के लिए। कितने महावदन्याय अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण। गरुण पुराण, गरुण पुराण के अंदर वर्णन है, अहम पूर्णा भविष्यामि युगा संध्यो विशेषतः मायापुरा नवदीप भविष्यामि शचीसुतः। मायापुर नवदीप में शची माता का पुत्र बनकर प्रकट हुआ, गरुण पुराण में। अहम पूर्ण भविष्यामि, और अपने पूर्ण रूप में भविष्य में प्रकट होऊंगा, युग संध्या, जब द्वापर से कलयुग की संध्या चल रही होगी। संध्या का पीरियड है 15,000 वर्ष, अभी 5,000 बीते हैं, तो कलयुग की जब संध्या चल रही होगी, युग संध्या, तब भगवान कहां आएंगे? शची माता के पुत्र बनकर आएंगे, नवदीप मायापुरे। नरसिंह पुराण में लिखा है चारों युगों के वर्णन के बारे में, कहते हैं सत्य दैत्य कुलादि नाश समय सिंह उर्धव मर्तकतम। सिंह उर्धव, सतयुग में भगवान नरसिंह रूप में आएंगे। त्रेतायाम दस कंधरम परिभावेन रमिति नाम कृतः। दस कंधर, रावण को मारने के लिए त्रेता युग में भगवान रमेति राम नाम से प्रस्तुत होंगे, प्रकट होंगे। गोपाल परिपालनम व्रजपुरे ब्रह्महरण द्वापरे। गोपाल, गोपाल के नाम से द्वापर युग में आएंगे, और गोरांग प्रिय कीर्तन, गोरे रंग के भगवान जिनको कीर्तन प्रिय होगा, कलयुगे चैतन्य नाम प्रभु। नरसिंह पुराण में तो नाम भी बताया चैतन्य नाम प्रभु, उनका नाम चैतन्य होगा। पद्म पुराण के अंदर वर्णन है कलह प्रथम संध्यायाम गोरांगाथम महितले भगीरथी तटे रमे भविष्यामि शचीसुतः। कलह प्रथम संध्यायाम, कलयुग की प्रथम संध्या जब द्वापर से परिवर्तित होगा, गोरांग थमा महितले, गोरे रंग के भगवान प्रकट होंगे नीम के तले पेड़ के नीचे, भगीरथी तटे रमे गंगा के किनारे, भविष्यामी शची सुता, भविष्य में शची के पुत्र होंगे। स्कंद पुराण, अंतः कृष्ण बाहिर गोरा, अंदर तो कृष्ण होंगे बाहिर गोरा, अंतः कृष्ण बाहिर गोरा संगोपांगास्त्र पार्षदम, वही भागवत का श्लोक वहां भी है स्कंद पुराण में, अंतर कृष्ण बाहिर गोरा संगोपांगास्त्र पार्षदम सची गर्भे समायुप संपायुम मया मनुष्य कर्म फल कर्म कृतः, मया मनुष्य कर्म कृतः, मनुष्य के जैसे कर्म करेंगे भगवान, सची माता के गर्भ में समायुपम समाहित होकर के मनुष्य जैसा कर्म करेंगे, देखने में लगेगा अरे तो महापुरुष है भगवान नहीं है। इसीलिए जब कोई कहता था चैतन्य आप तो भगवान है, वो अपने कान बंद कर लेते थे, विष्णु 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 विष्णु, मैं भगवान नहीं हूं। भक्त अवतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्ति कम, तो भगवान भक्त अवतार लेकर के आए हैं, इसीलिए चैतन्य चरितामृत में साफ साफ वर्णन किया गया कलयुगे युग धर्मे नामेरा प्रचार, कलयुग में नाम का प्रचार करना है। तथी लगे पीतवर्णे चैतन्या अवतार, और चैतन्य का अवतार ही पीले रंग का हुआ है इसी कार्य के लिए, हरि नाम का प्रचार करने के लिए, कितना इंपॉर्टेंट है। हम लोग सब कुछ का प्रचार कर रहे हैं, मंदिर बन रहा है उसमें प्रचार कर रहे हैं, ग्रंथ ले लीजिए उसका प्रचार कर रहे हैं, प्रसाद खाया करिए उसका प्रचार कर रहे हैं, हरि नाम का प्रचार, बेस में हरि नाम ही रहना चाहिए। अगर हरि नाम के आजू बाजू जो कुछ भी है चलेगा, लेकिन उसका मूल, जैसे पकोड़े के अंदर आलू का पकोड़ा बनाओ, ऊपर चाहे मूंग की दाल लगाओ, चाहे मसूर की दाल लगाओ, चाहे कुछ भी लगाओ, अंदर आलू बेस है, ऐसे हरि नाम बेस है। प्रभुपाद जी के अमेरिका जाने से पहले अनेकों लोग लंदन गए, अमेरिका गए, भक्ति सिद्धांत महाराज के शिष्य, उनके अंदर परिवर्तन नहीं हो पाया। बॉन महाराज जो कि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के बहुत बड़े प्रचारक थे, अपने एक पुस्तक में लिखते हैं कि ओनली भक्ति वेदांत स्वामी कैन डू इट, वही कर पाए लोगों के अंदर परिवर्तन। क्यों? बाकी सब लोग हरिनाम नहीं जपते थे, प्रचार नहीं करते थे। प्रभुपाद जब ग्रस्त थे तब श्रीधर स्वामी महाराज, भक्ति श्रीधर स्वामी, भक्ति रक्षक स्वामी, ये स्वामी थे, वो ग्रस्त थे, तो ये सारे स्वामी कहां गायब हो गए, गंगा में डूब गए। ये सारे स्वामी थे, लेकिन इन स्वामियों के संन्यास होने के बाद भी एक ग्रस्त व्यक्ति परिवर्तन कर पाया हजारों लोगों का, क्योंकि उसका हरि नाम के ऊपर पूर्ण विश्वास था। तो जब कभी भी आप परेशान हो, आपको लगे कि यार मैं फंस गया हूं, परेशान हूं, प्रचार नहीं कर पा रहा हूं, मेरी भक्ति सही नहीं चल रही है, तो कुछ नहीं करना चाहिए, हरि नाम को ध्यान पूर्वक करना चाहिए बस। हरि नाम कलयुगे युग धर्मे नामेरा प्रचार, तथी लगे पीतवर्णे चैतन्य अवतार, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ। और नीलांबर चक्रवर्ती बचपन में ही जब उनका हाथ देखे उनके नाना जी, तो बता दिए थे ये कौन है, भगवान। और एक ब्राह्मण आया था उनके नामकरण में, उसने बहुत सारी भविष्यवाणियां करी, कहा शिव ब्रह्मा भी इसके पैर छूना चाहते हैं, गौरांग महाप्रभु के। इसीलिए गौर आरती में आप गाते हैं ना, शिव ब्रह्मा आदि चवर डुलाए, भगवान के आगे पीछे है ना पंखा करते चवर डुलाते हैं, गंगा किनारे आरती होती है भगवान की, तो शिव और ब्रह्मा भी इसके पैर छुएंगे। इसको देखने से नास्तिक लोगों के अंदर परिवर्तन हो जाएगा, और इसका नाम होगा विशंभर, क्योंकि पूरे विश्व का, पूरे विश्व को ये पालन करने वाला व्यक्ति है विशंभर। और तभी जब भगवान चैतन्य का जन्म हुआ था, अनेकों अनेकों सुंदर स्त्रियां आई और उन्होंने पैर की धूल उठाकर अपने सिर पे लगाई, तो शची माता कहती मैंने आज तक इनको कभी नवदीप में देखा नहीं, कौन है ये लोग, और थोड़ी देर बाद अदृश्य हो गए। तो उस ब्राह्मण ने और नीलांबर चक्रवर्ती ने कहा तुम्हारा पुत्र जो है वो साक्षात भगवान है, इसीलिए देवी देवताओं की पत्नी अप्सराएं यहां पर तुम्हारे पुत्र की चरण रज लेने के लिए आए। तो उन गौरंग महाप्रभु का गौर पूर्णिमा उत्सव जन्माष्टमी से छोटा होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, लेकिन हम तो छोटा बनाते हैं, क्योंकि अभी तक हम खुद भी कन्विंस नहीं है कि गौरंग महाप्रभु इज बेटर, इज अबव देन कृष्णा। कृष्ण राधा रानी के साथ विस्तार होता है, उनमें 19-19 चिन्ह है, चेतन महाप्रभु के अंदर 32 चिन्ह है, गौरंग महाप्रभु या तो गोविंद या गौरंगा। कृष्ण अपने आनंद शक्ति का विस्तार करते तब वो दो रूप में प्रकट होते हैं, और हम क्या बोलते हैं वो दो रूप जब मिल जाते हैं तो चैतन्य बनते हैं, ऐसा नहीं है। बोलते हैं ना राधा और कृष्ण का युगल जोड़ी, राधा को इसलिए कृष्ण को लिया जोड़ा तो ये गौरांग नहीं, गौरांग इज साक्षात गोविंदा, वो अपना विस्तार करते हैं राधा और कृष्ण के रूप में। तो इतना ऊंचा ये हमारा गौड़िया वैष्णव संप्रदाय है। कहते हैं जो कृष्ण की भक्ति करते हैं उन्हें कार्ष्णव कहते हैं, जो विष्णु की भक्ति करते हैं उन्हें वैष्णव कहते हैं, जो शक्ति की भक्ति करते हैं उन्हें शाक्त कहते हैं, जो शिव की भक्ति करते हैं उन्हें शैव कहते हैं, और जो गौरांग महाप्रभु की भक्ति करते हैं उनको गौड़िया वैष्णव कहते हैं। तो गौड़िया वैष्णव बहुत ऊंचा सिद्धांत है, इसको सरलता से जाने ना दे, है ना। तो हमें कृष्ण तो जितने अच्छे लगते हैं उतने ही गौरांग महाप्रभु जब समान रूप में लगेंगे तो हम जानेंगे हमारी शरणागति बढ़ रही है भगवान की। तो इसमें